ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 22 और 23। 23वां श्लोक है, फिर पीछे दोहराइए। श्री नारद उवाच निंदन स्तव सत्कार न्यकार अर्थम कलेवरम प्रधान परयोः राजन अविवेकेन कल्पितम्। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, निंदन निंदा स्तव स्तुति प्रशंसा सत्कार सम्मान न्यकार अपमान अर्थम के प्रयोजन से कलेवरम शरीर प्रधान परयो प्रकृति तथा भगवान का राजन हे राजा अविवेकेन बिना भेदभाव के कल्पितम उत्पन्न हुआ। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, उसका मेरे पीछे दोहराए। श्री प्रभुपाद की। महर्षि नारद ने कहा, हे राजा, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषी अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है और वह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर आसीन समस्त जीवों के चक्र लगाने का निर्देशन कर रहा है। भौतिक शरीर का निर्माण बहिरंगा शक्ति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार किया जाता है। बद्ध जीव इस यंत्र में आरूढ़ होकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता है और देहात बुद्धि के कारण कष्ट ही कष्ट भोगता रहता है। वस्तुतः निंदा का कष्ट और प्रशंसा का हर्ष, सत्कार की स्वीकृति या कठोर शब्दों द्वारा अपमान, ये सभी जीवन की भौतिक धारणा से ही अनुभव किए जाते हैं। चूँकि भगवान भौतिक नहीं हैं अपितु सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे अपमान या सम्मान निंदा या स्तुति से अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहने तथा पूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर भी अधिक हर्षित नहीं होते। यद्यपि भक्त को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है, निसंदेह वे अपने तथा कथित शत्रु के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को सतत अपना शत्रु मानता है उसे भी लाभ होता है। यद्यपि वे भगवान के प्रतिकूल सोचता है, बद्ध जीव शत्रु या मित्र जिस रूप में भगवान पर अनुरक्त हो लाभ ही प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। महर्षि नारद ने कहा, हे राजा, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। इक्कीसवें श्लोक में आपने पढ़ा, यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहते हुए वायु से दीपक की लौ विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप सबको जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना के बारे में बताएं। जब विचलित हो रहा है, कैसा विचलित हो रहा है, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हवा चलती है तो दीपक की लौ जो है विचलित हो जाती है, एक जगह पर टिकती नहीं, सीधा मेरी बुद्धि जो है विचलित हो रही है, एक जगह पर टिक नहीं रही है, तो आप मुझे उपदेश दें। क्लियर कट मैसेज है कि अगर हमें भी अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम विचलित हो जाते हैं, तो हमें उसमें जो है किसके पास जाना चाहिए, गुरु के पास। ये गुरु जो है हमें ठीक रास्ता बता सकता है। अब विचलित कई बार हम जो है भौतिक संसार में होते हैं, बिजनेस ठप हो गया है या कमजोरी आ गई है, दिक्कत आ गई है, तो हम जो है एक भौतिक गुरु के पास जाते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से कैसे चल सकता है, क्या क्या हमारी कमियां हैं, हमें उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी। परंतु जब आध्यात्मिक विषय के अंदर जो है मन विचलित हो जाता है, तब हमको जो है आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो कि हम जो है जो हमारा मन और बुद्धि विचलित हो रहे हैं उसको ठीक तरीके से ठीक रास्ते पर कैसे लगाया जा सके। अब यहाँ जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर की विनती सुनकर अत्यंत शक्तिशाली गुरु नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे हर बात को जानने वाले हैं। इस तरह उन्होंने यज्ञ में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष उत्तर दिया। अब नारद मुनि जो है सारी बात को हौले हौले करके एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आज के श्लोक के अंदर जो हम कर रहे हैं, क्या चर्चा आ रही है, महर्षि नारद ने कहा, हे राजा, निंदा तथा स्तुति, अपमान तथा सम्मान का अनुभव अज्ञान के कारण होता है। बद्ध जीव का शरीर भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली बात यह है कि पार्ट टू, इसका जो पार्ट टू है, पार्ट टू कहता है कि बद्ध जीव का शरीर भगवान द्वारा अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है भगवान हमको कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है भगवान दयालु नहीं है। भाई जो आपको कष्ट दे रहा है वो दयालु कैसे हो सकता है? दयालु है कि नहीं है? है। कैसे है दयालु? आपको तकलीफ दी जा रही है और आप कह रहे हैं कि भगवान जो है वो दयालु है, कैसे मान ली जाए आपकी बात? दया के लेवल्स हैं। पहला, भगवान की दया जो है दो तरह की है, एक है कृपा और दूसरी है दया। दोनों में फर्क क्या है? कृपा किसे कहते हैं और दया किसे कहते हैं? कृपा करने का अर्थ यह है कि हमारे को पापों से शुद्ध करने के लिए भगवान प्रतिकूल परिस्थितियां बनाकर भेजते हैं। अगर एक व्यक्ति जो है, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक व्यक्ति जो है उसके पास भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, और आप उसे सब चीज़ें देते रहते हो दयावश, तो वो जो है उसी जाल में बार बार फंसता चला जाएगा। और मिल जाए, चलो मिल गए कपड़े, चलो थोड़ा जीवन और निकाल लें, थोड़ा और ऐसे मार्ग पर चल लें, थोड़ा और ऐसे मार्ग पर चल लें, तो वो जो है अपने मार्ग में इम्प्रूवमेंट नहीं करता, उसी रास्ते पर चलता जाता। Moves on the same path. जब अनुकूल परिस्थिति भेजी जाती है, जो आपको भौतिक संसार में मन के और शरीर के अनुकूल होती है, मतलब भौतिक संसार में आपको कष्ट नहीं होता, इसका मतलब है कि आप पे दया करी जा रही है। परंतु जब भौतिक संसार के अंदर आपको कष्ट होता है, कष्ट होने पे आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान आपको अपने पास बुला लेते हैं, ये प्रोसेस अडॉप्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो कहा जा रहा है कि हमको हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां भेजी जाती हैं, वो हमारे पे भगवान की कृपा है, और जब अनुकूल परिस्थितियां भेजी जाती हैं तो वो हमारे पर दया है। अब आती है इसके बाद वैष्णव दया। वैष्णव दया क्या है? वैष्णवों की दया क्या है? वैष्णवों का गुण क्या है? परा दुखा दुखी, अर्थात दूसरों के दुख से दुखी होना और दूसरों के सुख से सुखी होना। भौतिक संसार का गुण क्या है? कि दूसरों के दुख से सुखी होना और दूसरों के सुख से दुखी होना। ऐसे ही होता है ना प्रभु जी? एक व्यक्ति जो है भगवान के पास प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है वर मांगो। सोचा भगवान मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए, मैं जो मांगू वो मुझे मिल जाए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तेरे को मिल जाएगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तेरे को मिलेगा ना उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। जो तेरे को मिलेगा उससे दो गुना तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो उसने एक दिन कहा मेरे पास एक कार आ जाए, पड़ोसी के पास दो हो गई। मेरा एक मकान हो जाए, पड़ोसी के पास दो हो गए। मेरा फार्म हाउस हो जाए, पड़ोसी के पास दो हो गए। तो बड़ा दुखी हुआ। ये क्या हुआ कि मैं मांगता हूँ एक चीज और उसको मिलती है दो चीज। तो बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी प्लानिंग करी, बड़ा सोचा। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गए। पड़ोसी के सुख से सुख नहीं मिल रहा, तो दुख मिल रहा है। बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो ये हम लोगों का लेवल है। पर वैष्णव का लेवल क्या है? वैष्णव जो है आपके दुख से दुखी होता है और आपके सुख से सुखी होता है। नंबर एक। नंबर दो, वैष्णव जो है आपके ऊपर जब दुख आता है तो उसको अपने ऊपर ले लेता है। जब आप दीक्षा लेते हो तो दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और क्षा। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, कि आपको गुरु जो है दिव्य ज्ञान देते हैं। और क्षा का अर्थ है कि आपके पापों का क्षय करते हैं। पापों का क्षय कैसे करते हैं? कि आपसे कमिटमेंट देते हैं कि आज के बाद आप पाप नहीं करेंगे ठाकुर जी के सामने, और आपके जो पाप किए हुए हैं उनको अपने पे ले लेते हैं। जब श्री प्रभुपाद को पढ़ते हो तो प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि गुरु को कष्ट कब आता है। गुरु को कष्ट आता है जब उनके शिष्यों ने अपराध किए हुए हैं। शिष्य जो है अपने कार्य में, अपनी सेवा में, अपनी दीक्षा में ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। इसीलिए जो है हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी अपने एक लेक्चर में कहते हैं, सिंसेरिटी का अर्थ में जो आई शब्द आता है उसका मतलब है इनिशिएट डेली। आपने कहा मेरी एक बार दीक्षा हो गई, और वो कहते हैं नहीं आपको तो रोज दीक्षा लेनी है। बोली रोज दीक्षा कैसे ली जाएगी? बोले आप जब पहले दिन दीक्षा लिए थे तो उस दिन आप क्या किए थे? उस दिन मैंने जो है गुरु के प्रति समर्पण किया था, भगवान के प्रति समर्पण किया था, और मैंने वायदा किया था कि गुरु महाराज आपके समस्त आदेश का पालन करो। अब आप क्या करते हो? गुरु के आदेश का पालन करते हो या गुरु से अपना मन जो होता है उसके अनुसार आदेश लेते हो? महाराज मैं ऐसे कर लेता हूं आपकी ब्लेसिंग चाहिए, ये नहीं पूछा कि महाराज आप कैसे करने को कहते हो। कभी सोचते हैं इस बात में? हमारे मन में भाव यही आता है कि जो हमारे मन में हो रहा है, जो हमारे मन में विचार उठ रहा है उसको करें, और उसको करने के लिए महाराज को कंपेल कर दें कि आप हाँ कर दो, आप यस कर दो, आपकी यस चाहिए। फिर हम कहेंगे देखा मुझे महाराज ने परमिशन दे दिया ऐसा करने के लिए। जो बेस्ट शिष्य है, जो हाईएस्ट कैटेगरी का शिष्य है, जो प्रथम श्रेणी का शिष्य है, वो क्या कहता है? वो महाराज के मन की बात समझता है, और जो महाराज के मन की बात है वो करता है, अपने मन की बात नहीं करता। तो हम जो है जब इनिशिएट डेली करेंगे, तो डेली हम जो है आत्मचिंतन करेंगे कि हमने महाराज के वो भगवान को क्या कमिटमेंट दी है, क्या मैं उस पर पूरा उतर रहा हूं कि नहीं उतर रहा। अगर मैं उस पर पूरा उतर रहा हूं तो ठीक है, नहीं उतर रहा हूं तो मुझे उसके बारे में सोचना है और उसी के अनुसार चलना है, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रभुपाद के आदेश हैं मुझे उसका पालन करना। जैसे आपने कहा कि मैं रोज भागवतम पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, ये ग्रंथ पढ़ना है, तो रोज आपको उसको पढ़ना है, आपको उसके बारे में रोज चर्चा करनी है, प्रजल्प नहीं करना है, जहां मिलेंगे एक दूसरे को वहां पे कृष्ण उपदेश ही करना है, भगवान की ही चर्चा करनी है और किसी की चर्चा नहीं करनी। तो जब आप आत्मचिंतन करेंगे तब आप जो है इनिशिएट हो रहे हैं, तब आपने सोचना है कि मैंने गुरु महाराज को कमिटमेंट दी है कि मैं कोई पाप का कार्य नहीं करूंगा। तो इनिशिएट डेली का मतलब यह है कि मैंने कोई पाप का कार्य नहीं करना, मतलब अगर मैं पाप का कार्य करूंगा तो मेरे उस पाप का इफेक्ट मेरे गुरु पे होने वाला है। तो मैं जो है डेली अपने आप को दीक्षा दे रहा हूं, डेली इनिशिएट हो रहा हूं कि मुझे आज से कोई पाप का कार्य नहीं करना है, क्योंकि मेरे पाप का कार्य करने से मेरे गुरु को कष्ट होगा। तो गुरु जो है वो दूसरों के ऊपर दुख आने पर उनके दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु हम ऐसा मौका ही क्यों पैदा करें जिससे हम पे दुख आए। अब आप कहते हैं दुख तो प्रारब्ध के अनुरूप आते हैं, प्रारब्ध होता है तो दुख आते हैं। ये कहा जाता है कि गुरु आपके मन की बात जानता है। मन की बात जानने का क्या अर्थ है? अगर आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो गुरु क्या आपको 2 करोड़ दे देंगे? वो तो कहेंगे मेरे जितने भक्त हैं उनको कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार, तो मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पैसे ही मारता रहा हूं, लोगों को कहां से लाऊंगा मैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेना का क्या अर्थ है? दिस इज टू बी अंडरस्टूड। जब आपको दुख आता है, सपोज आपको 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो आपके मन के अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं? आप चिंतित हैं, आप दुख में हैं, आपकी फीलिंग जो है वो ऐसी आ रही है कि मेरा बड़ा नुकसान हो गया है, मेरे बड़े कष्ट में हूं, मैं काफी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूं, कैसे इससे बाहर निकलूंगा? तो गुरु जो है आपको कंसोलेशन देके, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार से उपदेश देके आपके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, उसको सहने की शक्ति बनाने के लिए हेल्प करते हैं। ही हेल्प्स यू। तांत तिक्षव भारता, कि ये तो जो है इंद्रिय बोध से उत्पन्न हो रहे हैं, सुख और दुख जो है क्षणिक है, कुछ अरसे के लिए आता है, कुछ उसके बाद चला जाता है, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती हैं, तो इसलिए इनको सहने का अभ्यास कर। तो गुरु आपको जो है सहने का अभ्यास करने का उपदेश देता है, समझाता है, आपके मन की बात जानता है, और मन के अंदर समस्या यही आ रही है कि आप उस दुख को सह नहीं पा रहे। जो आपको लॉस हुआ है, जो कष्ट हुआ है, आप उस दुख को सह नहीं पा रहे, तो गुरु जो है उस दुख को अपने पे लेने का मतलब यह है कि आपसे आपके मन की बात जान के आपके मन को थोड़ा सा शक्तिशाली बनाने में हेल्प करता है, ताकि आप उस दुख को सह जाएं। यू शुड बी एबल टू टॉलरेट इट। कंसोलेशन देगा, सहारा देगा, सहायता देगा, सांत्वना देगा, और उससे जब आपको ज्ञान देगा, जो अज्ञान की वजह से आप जो है दुख को ज्यादा महसूस कर रहे हो, जब वो ज्ञान देगा तो आपको जो है दुख को सहन करने की शक्ति आ जाएगी। अब आता है इसमें तीसरा पॉइंट, कि साधारण भक्त जो हैं उनकी दया कैसी है। साधारण भक्त कहता है कि दूसरों के दुख को दूर करने की भावना रहती है उसके अंदर, अपने पे नहीं ले सकता, और दूसरों के दुख में दुखी होता है, दुख को दूर करने की भावना होती है, दूसरों के दुख दूर हो जाएं इसके लिए कोशिश करता है, प्रार्थना करता है। कैसे कोशिश करता है? आपके दुख का कारण है अज्ञान, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रारब्धवश मुझे ये दुख, मेरे पाप कर्म थे जिनके लिए मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, मेरा पाप फल भोगा जा रहा है। अब वो जो भक्त है आपको कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करता है, अर्थात आपके लिए वर्तम प्रदर्शक गुरु बन जाता है, पथ प्रदर्शक गुरु जो आपको रास्ता दिखाता है कृष्ण के भाव में आने के लिए, कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। वो कोशिश करता है कि जब आप जो है शास्त्र पढ़ेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, तो आप में भी दुख सहने की शक्ति आ जाएगी और आप दुख से परेशान नहीं होंगे। भक्त की भावना रहती है आपको समझाने की, आपको दुख के भाव से दूर करने की। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिएगा कि प्रारब्धवश जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनके फल के अनुरूप आपको 10 पुण्य के फल मिलने हैं और 10 पाप के फल मिलने हैं। एक आर्बिट्रेरी फिगर हमने 10 की ले ली। अब आपको जो है किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से एक बड़ा लाभ हो गया, फायदा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, गुड गुड हो गया, तो आप क्या करते हो? उसकी प्रशंसा करते हो, उसका मान करते हो, सम्मान करते हो, तारीफ करते हो, वाह 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 क्या बात है, ओ मजा आ गया, गिफ्ट लेके जा रहे हो, दिवाली पे गिफ्ट लेके जा रहे हो, नए साल पे गिफ्ट लेके जा रहे हो, मतलब आप उसके प्रति अपने आप को बड़ा ही आदर मान सम्मान से भेंट करते हो, क्योंकि उसने आपके लिए बड़ा अच्छा किया है। टेक्निकली आपको एक पुण्य का फल उस कारण से मिल गया। एक दूसरे भक्त आए, उन्होंने आपका कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि बहुत बुरा हो गया, नुकसान हो गया, ना हरे कृष्णा करनी है, ना बोलना है, टांग अलग खींचनी है, जहां खड़े हो वहां नीचे से चादर ही खींच देनी, धाड़ से गिरे, निंदा करनी है, बुराई करनी है, चुगली करनी है, 10 लोगों के सामने इनको नीचा दिखाना है, परंतु इन्होंने आपके पाप का फल भुगतवा दिया। तो जो व्यक्ति आपके पाप का फल कम करता है, आपको कष्ट दिलवाता है, पर आपके पाप 10 में से 9 रह गए, फल 10 में से 9 रह गए, और दूसरे ने पुण्य फल 10 में से 9 कर दिए, तो पाप फल कम करने वाला अच्छा है कि पुण्य फल कम करने वाला अच्छा? तो आप जो है पाप फल वाले को तो बुरा कह रहे हो, उसको तो गाली गलौज कर रहे हो, हरे कृष्णा भी नहीं कर रहे, उससे हाय हेलो भी नहीं कर रहे। तो ये बात समझनी है कि साधारण व्यक्तियों की जो है, साधारण भक्तों की दया क्या है, दूसरों के दुख दूर हो जाएं इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं, वो उनको भगवान के पास लेके आते हैं, कृष्ण भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, उनको कृष्ण भावनामृत से परिचय कराते हैं, जिससे वो आने वाले समय के अंदर जो है सहने की शक्ति प्राप्त कर सके और भगवान की इम्पोर्टेंस समझ सके। अभी क्या होता है, अभी आज का सिनेरियो क्या है, आज का सिनेरियो क्या है कि अगर मैंने कुछ फायदा कमा लिया, बढ़िया बढ़िया हो गया, तो मेरे कर्मों का फल है, मैंने मेहनत करी, देखा मैंने बिजनेस चमका दिया, देखा मैंने मकान बनवा दिया, देखा मैंने फार्म हाउस ले लिया। अगर कहीं बिजनेस में नुकसान हो गया, ये भगवान जो है ना बड़े निर्दयी है, नुकसान कर दिया है, मैं आज से मंदिर नहीं आऊंगा, ये बिल्कुल किसी की नहीं सुनते हैं, ये जो है कष्ट देते हैं, क्योंकि नुकसान हुआ तो भगवान ने कराया, फायदा हुआ तो मैंने किया। ये आज की डेट में जो है पब्लिक के मन के अंदर भावना उठती है। अब आती है चौथा पॉइंट कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनकी दया कैसी है। भगवान की दया की बात करी, वैष्णव दया की बात करी, भक्तों की दया की बात करी, अब साधारण मनुष्य जो हैं वो दया कैसे करते हैं? अखबार में कल एक एड था, नीचे फोटो छपी हुई है, ऊपर फोटो छपी हुई है, सिलाई मशीन मिलेगी, एक महीने का राशन मिलेगा, बैसाखी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा नीचे, और सब ये माननीय हमारे ये जो है ये आपको सब कुछ दिलवाएंगे। वो जो भौतिक संसार में दया करी जा रही है किस लिए करी जा रही है? आप दूसरों के दुख में दुखी हैं, मान लिया बात, पर इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है? आपको अपना मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लाभ चाहिए, अपना सुख और स्वार्थ की पूर्ति, कि मेरी जय जयकार होनी चाहिए, मेरी फोटो छपनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि मिस्टर एक्स एक्स वाई ने ये कार्य किया। तो दया जो हो रही है वो अपने मान सम्मान के लिए हो रही है, गिफ्ट किया जा रहा है अपने मान सम्मान के लिए किया जा रहा है। पंखा दिया ना तो ऊपर नाम लिख दिया जाएगा, श्री राम अग्रवाल जी ने पंखा से प्रेम भेंट किया, और पंखा घूम रहा है, श्री राम अग्रवाल भी घूम रहे हैं साथ के साथ। पत्थर लगवा दिया जाएगा, फलाने फलाने ने ऐसा ऐसा भेंट किया। तो अपने मान सम्मान की और दूसरे के मान सम्मान की जो चर्चा है वो आज के डेट के अंदर अगर हम देखें तो दया जो कर रहा है व्यक्ति वो दूसरों को मान सम्मान देने के लिए नहीं कर रहा है बल्कि अपने मान सम्मान के लिए कर रहा है। अब आती है बात निंदा की। निंदा किसे कहते हैं? व्हाट इज निंदा? यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है ना निंदा और स्तुति। स्तुति का मतलब क्या है? प्रशंसा लिखा है, तारीफ करनी आपकी है, आपकी खूब तारीफ करी जा रही है, गुणगान गाया जा रहा है, स्तुति हो गई। निंदा क्या है? और निंदा में और चुगली में भेद क्या है? दोनों में अंतर क्या है? निंदा किसे कहते हैं और निंदा का रूट क्या है? निंदा आती कहां से है? वैसे सोर्स ऑफ इट, इसका सोर्स क्या है? प्रभु जी कह रहे हैं कि निंदा जो है ईर्ष्या से आती है। ठीक है, ईर्ष्या कहां से आती है? रूट, मैंने पूछा, रूट जड़। बहुत बुरे हैं प्रभु जी, नॉट एट ऑल गुड, बिल्कुल किसी की सहायता नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते, टेढ़ी आंखों से देखते हैं, वगैरह 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 शब्द इस्तेमाल किए। प्रभु जी सारे ला रहे, यस यस सॉरी। आप दूसरे व्यक्ति के लिए अपमानमय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, इसमें प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें बुराई कर रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम, तुम ठीक नहीं हो भाई अतुल प्रभु, यू आर नॉट अ राइट पर्सन, ठीक नहीं हो आप, मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। रूट कहां है? मैं आपकी बुराई क्यों कर रहा हूं? मैं आपकी निंदा क्यों कर रहा हूं? वाई? क्योंकि मैं आपसे कुछ कामना किए बैठा था और वो कामना की पूर्ति नहीं हुई। आपसे कुछ इच्छा थी मेरी, सब डिजायर, कुछ भौतिक संसार की, आध्यात्मिक संसार की कुछ कामना थी। आपने मुझे वो जो पिछली वाली क्लास हुई थी उसके नोट्स दे दिए ना, मैंने आपसे मांगे थे, आपने रिकॉर्डिंग करी थी, मैंने आपसे मांगी थी, आपने मुझे नहीं दी ना, तो ये आपके लिए निंदा का कारण बन गई। मैं जहां मिलूंगा ना तो चुगली करूंगा। चुगली मीन्स निंदा इन द बैकड्रॉप, पीछे से किया जा रहा। प्रभु जी वो अतुल प्रभु है ना, बहुत बेकार आदमी, स्वार्थी हैं, अपने मतलब की बात करते हैं। अब मैंने क्या बुरा किया? एक सीडी तो मांगी थी ना कि मेरे को जो रिकॉर्डिंग है सुनवा देना, दी नहीं उन्होंने, खुद मांगने आ जाएंगे मेरे से, पर मेरे मांगने पे نہیں دیا. مطلب میں ان کی برائی کر رہا ہوں ان کی پیٹھ کے پیچھے, تو چگلی ہو گئی. نندا میں روٹ ہے کامنا, ڈیزائر. آپ کسی کی نندا کرتے ہو کیونکہ آپ کی جو اس کے پرتی آپ نے کوئی کامنا کری تھی, کوئی ڈیزائر رکھی تھی, وہ آپ کی فلفل نہیں ہوئی. یہ ایک پارٹ ہے نندا کا. نندا میں نکل کے کیا آتا ہے کہ ایک دیوی پرکرتی کے اندر جو گن ہے وہ آپ میں نہیں ہے. کیا ہے؟ اپیشونم. سولہواں ادھیائے پڑھیں گے بھگوت گیتا کا تو پہلے سے تیسرے شلوک میں ایک شبد آتا ہے اپیشونم, مطلب پیشونتا کا نہ ہونا, ارتھات چھدرا ونیشن نہ کرنا. پر آپ پیشونم ہو, چھدر نکال رہے ہو, آپ اس کی کمیاں نکال رہے ہو, اپنے اوگن نہیں دیکھ رہے, دوسرے کے اوگن دیکھ رہے ہو. اپنی غلطیاں, اپنی مسٹیکس, اپنے اوگن, ان کی طرف دھیان نہیں ہے, پرنتو دوسرے کے اوگن جو ہیں چھانٹ چھانٹ کے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہو. تو یہ بھی خرابی ہے, اس میں یہ بھی خرابی ہے, اس میں یہ بھی خرابی ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا یہ ایسے ہیں, پھر تمہارے ساتھ ایسا ویوہار ہوا کیا؟ میرے ساتھ آپ نے کوئی برا ویوہار نہیں کیا, پر میں آپ کی نندا کیوں کر رہا ہوں کہ مہاویر پربھو نے ایسا کہا تھا اس لیے یہ برے ہیں. مطلب کسی دوسرے کے کہنے پر بھی آپ کی برائی شروع کر دی, آپ کی نندا شروع کر دی. نندا کرنے میں ایک دوسرا کارن اور ہے کہ اگر کوئی ویکتی بھوتک سنسار میں یا آدھیاتمک سنسار میں آپ سے بیٹر پوزیشن لے لیتا تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا, یہ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا, میں مندر جاتا ہوں مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اس کو سارے پوچھتے ہیں, تو نندا کا کارن بن گیا. بھکت کا اس میں کچھ انٹرسٹ ہوگا تبھی ان کو زیادہ پوچھتا ہے. ان دونوں کی کوئی ملی بھگت ہے, وہ کھچڑی پک رہی ہے, فائدہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس لیے ان کا آپس میں تال میل جوڑ زیادہ ہے, تو نندا کرنی شروع کر دی. روٹ کیا ہے کہ میرا مان سمان نہیں ہوا, اس کا کیوں ہو رہا ہے؟ میری بڑھائی کیوں نہیں ہوئی, میرا مان نہیں کیا گیا, میرا سمان نہیں کیا گیا, مجھے عزت نہیں ملی. کہ ارے بھکت دروازے پہ آتا مجھے بھی ہرے کرشنا کر کے اندر لے جاتا, پرساد کھلاتا, مجھے تو کھلایا نہیں, ان کو کھلا رہا ہے, تو اس کی نندا کرنی شروع کر دی. تو روٹ الٹیمیٹلی جب دیکھیں گے تو نندا کے پیچھے جو جڑ ہے وہ جڑ ہے کامنا, کہ آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ فلفل نہیں ہو رہی. اور بھگوان جو ہے چودھویں ادھیائے میں بتاتے ہیں کہ نندا ہو یا استوتی ہو, دونوں کے اندر کی جا رہی ہے کسی ویکتی کے پرتی. اور جب ویکتی جو ہے تینوں گنوں سے اوپر اٹھتا ہے تو اس کا نہ نندا سے نہ ہی استوتی سے کوئی سمبندھ رہتا. چودھویں ادھیائے کے چوبیسویں پچیسویں شلوک میں بھگوان سپشٹ بتاتے ہیں تلیہ نندات‌مک ستی, کہ آپ جو ہے نندا استوتی سے اوپر جائیں گے. جو آپ کی نندا کرتا ہے, ہوتا کیا ہے, آپ نے میری نندا کری تو میرا آپ سے دویش ہو گیا, میں آپ کا دشمن بن گیا, میری برائی کر رہا تھا, میری برائی کر رہا تھا تو میرا آپ سے دویش ہو گیا, میری آپ سے دشمنی ہو گئی, کیونکہ آپ جو ہے میری برائی کر رہے ہیں. پرنتو بھگوان کہتے ہیں ادویشٹا سرو بھوتا نام, کہ جو آپ سے دویش کرتا ہے اس سے بھی آپ کو دویش نہیں کرنا. یہ بھکت کی پہچان ہے, پہلا گن ہے بھکت کا. بھگوت گیتا کے بارہویں ادھیائے میں تیرہویں شلوک سے لے کے انیسویں شلوک تک بھکتوں کے 39 گن دیے گئے ہیں. اس میں ایک گن ہے کہ جو آپ سے دویش کرتا ہے, جو آپ کی نندا کرتا ہے, چگلی کرتا ہے, اس سے بھی آپ نے دویش نہیں رکھنا. اور ہمیں اس کا جو ہے اتر ملتا ہے بھکتی سدھانت مہاراج کے جیون چرتر سے, کہ ان کے ایک ششیہ کی مرتیو ہو گئی تو بھکتی سدھانت مہاراج بہت ہی ادویلت ہو گئے, دکھی ہو گئے. तो दूसरे शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज आप इतना परेशान क्यों होते हो, अच्छा था बेचारा चला गया, आपकी निंदा ही करता रहता था, आपकी बुराई करता रहता था, आपकी गलतियां बताता रहता था, क्रिटिसाइज करता था आपको, हमेशा जो है आपके खिलाफ ही रहता था, चला गया ना अच्छा हो गया, अब कम से कम टेंशन तो नहीं है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं टेंशन तो अब पैदा हुई है उसके जाने पे। शिष्य बोले क्यों? बोले कि मेरा भक्ति में चढ़ाओ, मैं आज इतना अच्छा भक्त बन पाया हूं तो उसी की वजह से हूं कि मेरी गलतियां बताता रहता था, आज मेरी गलतियां कौन बताएगा कि मैं भक्ति में और आगे बढ़ सकूं? Who will tell? जब तक कोई मेरे को मेरी मिस्टेक्स मेरी कमियां नहीं बताएगा मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, आई कांट प्रोग्रेस। तो मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है, somebody is there to criticize me and somebody is there to tell my mistakes। जब तक वो मेरी गलतियां नहीं बताएगा, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तब तक मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो यहां पे कहा जा रहा है कि निंदा से आपके चित्त में खिन्नता नहीं आनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जो आपकी निंदा करता है उससे भी आपको द्वेष नहीं होना चाहिए। अब दूसरी स्थिति क्या कह रहे हैं कि अगर कोई स्तुति करता है आपकी प्रशंसा करता है तो आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। ये सर्वर्थ अनभि स्नेह तत्त्य प्राप्त शुभ शुभम ना अभिनंदती ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। आपको जो स्तुति कर रहा है उससे प्रसन्नता नहीं, स्तुति करने वाले से अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, क्योंकि राग होगा तो आप इसी जाल में फंसते चले जाओगे और फिर भगवान धाम जाने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यहां कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आपके पाप कटते हैं, आप में शुद्धता आती है, ये शास्त्र का वचन। अगर स्तुति करता है तो आपके पुण्य नष्ट होते हैं। तो बेसिकली मेरा फायदा दोनों सिचुएशन में है, पर मुझे उससे ना हर्षित होना है ना द्वेष करना है, क्योंकि मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए और मुझे पाप भी नहीं चाहिए। पुण्य करते हैं तो भी खुश हूं, पाप करते हैं तो भी खुश हूं, पर मैं ये नहीं कहता भी तो मेरी तारीफ कर, उससे मेरा भाग नहीं, अटैचमेंट नहीं। और जो मेरी निंदा कर रहा है उससे मेरे को कोई द्वेष नहीं है। दिस लेवल इज टू बी अंडरस्टूड। अब आ रही है चर्चा इसके बाद लास्ट में कि बद्ध जीव का शरीर भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से इस जगत में कष्ट भोगने के लिए बनाया गया है। बहिरंगा शक्ति जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका कंट्रोल इस संसार में कौन कर रहा है? Who is doing it? जोर से बोलो। बहिरंगा शक्ति का कंट्रोल किसके हाथ में है इस भौतिक संसार में? दुर्गा देवी को ड्यूटी दे रखी ना, दुर्गा देवी को ड्यूटी दे रखी, उसके पास क्या है? त्रिशूल। और त्रिशूल में जो है कितने ऊपर जो है पियर्सिंग के लिए डंडे होते हैं? तीन। वो आपको जो है आदि भौतिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट और आधिदैविक कष्ट, तीन प्रकार के कष्ट देती हैं। किस लिए, क्यों दे रही है? आपको रियलाइज कराने के लिए कि भौतिक संसार कष्टों से भरा है और इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और मृत्यु के उपरांत भगवान के धाम जाने का मार्ग तैयार करना चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर द पाथ। आपको वो रास्ता तैयार करना है, आपको भगवान के धाम जाने के लिए कोशिश करनी है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो दुर्गा देवी आपको कष्ट देके आपके पापों का क्षय कर रही हैं और आपको तैयार कर रही हैं कष्ट भोगने के साथ कि आप भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करें। भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। शर्त यह है कि आपने कृष्ण भावनामृत के अंदर दक्षता प्राप्त करनी है, परफेक्शन लेनी है। तो भगवान जो है बहिरंगा शक्ति को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुमको इस जगत के अंदर कर्मों का फल भुगतवाना है, कष्ट भी देने हैं और आराम भी देना है, परंतु अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि तुम्हें पब्लिक को तैयार, लोगों को तैयार करना है मेरे पास वापस आने के लिए। शरीर की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, परंतु मटेरियल कौन सप्लाई करता है? मिस्त्री आया दीवार खड़ी कर रहा है, पर मटेरियल कहां से आया है? तो मटेरियल देती है बहिरंगा शक्ति। इस शरीर बनाने का जो आपके पास 5 स्थूल तत्व हैं, 3 सूक्ष्म तत्व हैं, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 उनके विषय हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, और ये सारा का सारा जो है तामझाम कौन प्रोवाइड कर रहा है? मालिक भगवान है, पर अलॉटमेंट कर रही है बहिरंगा शक्ति और बना रहे हैं ब्रह्मा जी। इट्स अ प्रोसेस। तो यहाँ जो है आपको कष्ट देने के लिए जो है बहिरंगा शक्ति को डिप्यूट किया गया है कि आपको कष्ट देके वो भगवान की तरफ आकर्षित कर सके। अब प्रभु बाजी परपट में एक सुंदर बात लिखते हैं, उसका उत्तर ढूंढना है। क्या लिखते हैं? अप्रभावित रहने तथा पूर्ण होने के कारण वे भक्तों द्वारा सुंदर प्रार्थनाएं किए जाने पर अधिक हर्षित नहीं होते। आप प्रार्थना करते हो तो भगवान हर्षित नहीं होते, अधिक हर्षित, हर्षित नहीं अधिक हर्षित। यद्यपि भक्त को भगवान की प्रार्थना करने से लाभ होता है, इसका क्या अर्थ? व्हाट डज इट मीन? जब भगवान हर्षित ही नहीं हो रहे हैं तो भैया काहे प्रार्थना करी जाए? व्हाई? टेढ़ा है ना मामला। अगर वाक्य है तो इसका कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है, उसके बिना वाक्य इस्तेमाल नहीं लिया। प्रभुपाद ने कहा मीनिंग है, उसके पीछे बैकग्राउंड में कारण है, तभी इस शब्द को, इन शब्दों को लिखा गया। तो भगवान जो है आपकी प्रार्थना करने से हर्षित नहीं होते, इसका क्या अर्थ है? अधिक हर्षित, हर्षित होते हैं परंतु ज्यादा हर्षित नहीं होते। तो पहला प्रश्न यह है कि प्रार्थना करता कौन है? वंदना और प्रार्थना दोनों में फर्क है। प्रार्थना क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम। आरती है भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे दुख और कष्ट दूर हो जाए। जिज्ञासु है भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को ज्ञान मिल जाए। अर्थार्थी है भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। तो भगवान ऐसी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करते हैं पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि तूने मेरे पास आने की प्रार्थना नहीं करी। तूने जो प्रार्थना कर रहा है भौतिक संसार में अटके रहने की प्रार्थना कर रहा है कि मुझे धन मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, दुख और कष्ट दूर हो जाए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, मतलब तू इस भौतिक संसार के अंदर एंजॉय करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसी प्रार्थनाओं से प्रसन्न नहीं होता। मैं कैसी प्रार्थना से प्रसन्न होऊंगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? इससे क्यों प्रसन्न होऊंगा मैं? क्योंकि यहां तुम जो है प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे मांग नहीं रहे कुछ भी, तुम यू नॉट डिजायरिंग एनीथिंग। यहां प्रार्थना क्या हो रही है कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो तुम जो है मेरी सेवा में लगने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मुझे भौतिक संसार में सुख भोगने के लिए मुझसे कुछ नहीं मांग रहे हो। तो प्रार्थना के अंदर जब हम भौतिक संसार में कुछ मांगने का प्रयास करते हैं तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न नहीं होते, अप्रभावित है। ठीक है, बेटा है मांग रहा है दे दो, परंतु अभी बेटे का पिता के पास आने का मन नहीं है। उसका मन कहाँ है? इस भौतिक संसार के अंदर अभी कुछ और चक्कर काटना चाहता है, और घूमना चाहता है। अभी उसका घूम घूम के मन जो है नहीं भरा है, उसको और घूमने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब थक जाएगा, जब समझ जाएगा कि इस भौतिक संसार में और नहीं घूमना है, तब वो प्रार्थना करेगा, वंदना करेगा मेरे पास आने के लिए, तब वो मेरे पास आने के लिए प्रार्थना करेगा। तो भगवान जो है प्रार्थना, हम बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, मिठाई लेके जाते हैं भगवान के लिए, फल लेके जाते हैं भगवान के लिए, प्रॉमिस करते हैं मैं घर में कीर्तन करा दूंगा, और फिर कुछ मांग लेते हैं। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो, मतलब तुम्हारे मन में मेरे सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए। हम जब भगवान के आगे खड़े होते हैं मिठाई का डिब्बा लेके, तो हमारे मन में उस वक्त भगवान होते हैं या हमारी चाहत होती है, हमारी कामना होती है? मन में भगवान नहीं होते, मन में कामना होती है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। तो आपके मन के अंदर भगवान है कहां? आपके मन में अंदर कामना है, उस डिजायर के हेतु आप वहां पर गए हैं कि मेरी डिजायर फुलफिल होनी चाहिए, और उसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए थोड़ा आया तो अपनी कामना पूर्ति के लिए आया, तो मैं काहे खुश हो जाऊं इससे। इसीलिए आप बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हो, बड़े 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 अलंकारिक शब्द इस्तेमाल करते हो, बड़े बड़े सुंदर गिफ्ट लेके जाते हो, पर अपने किसी कार्य के हेतु कि मेरा कार्य इससे पूरा हो जाए, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। इज नॉट हैप्पी। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? कि तेरे पास कुछ भी ना हो, एग्रीड। 56 भोग लगा दिया, भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। आपने कुछ मांग लिया, भगवान किससे प्रसन्न है? अनन्य चिंतो यंतो मां बेजना पर उपासते, जिसके पास कुछ नहीं है पर उस अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं उसकी चेतना शुद्ध है तो मैं उसे पत्र पुष्प फल और जल भी स्वीकार कर लेता हूं। किससे स्वीकार करते हैं? पत्र पुष्प फल और जल स्वीकार करते हैं उससे जो भगवान का अनन्य भक्त है। आप 1008 भोग लगा दीजिए, 56 भोग लगा दीजिए, 108 भोग लगा दीजिए, पर मन में आपके कामनाएं हैं, उन डिजायर के हेतु आप लगा रहे हैं, तो भगवान इज नॉट हैप्पी। ठीक है, लेके आया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बट अपने फायदे के लिए लेके आया, मेरे लिए क्या लेके आया? मांग रहा है ना मेरे से कुछ, मेरी सेवा में, तो अपने लिए लेके आया है, तो उससे भगवान को खुशी नहीं मिलती, उन प्रार्थनाओं से भगवान को खुशी नहीं मिलती, भगवान उसको एंजॉय नहीं करते। फिर भी कहते हैं कि भगवान अपने शत्रु के प्रति दयालु रहते, कि चल भाई तूने दुश्मनी से सही, वैर भाव से कही, पर तेरे तो मन में हमेशा मैं था। कंस ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं बुलाया, रावण ने एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं बुलाया। तो सबको जो है भगवान ने सायुज्य मुक्ति दिया है, सामिप्य नहीं दी, सालोक्य नहीं दी, उनको साष्टि नहीं दी, सारूप्य नहीं दी, परंतु सबको सायुज्य मुक्ति दी है कि सारे भगवान में प्रवेश कर गए। शिशुपाल को सब काटा है, तुमको देखा है भगवान में प्रवेश कर रहा, सबको लाभ दिया है। भगवान अपने शत्रु के प्रति भी दयालु हैं, क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। तो अगर शत्रु है तो क्या उसके हृदय में विराजमान नहीं है? असुर है, क्या उसके हृदय में विराजमान नहीं है? एक आदमी जो है पापी है, यहां पे गलत कार्य कर रहा है, उसके हृदय में भी विराजमान है, पर अलिप्त है, लिप्त नहीं है उससे। एक अच्छे काम कर रहा है, उसके हृदय में विराजमान है, परंतु अलिप्त है। यही बात जो है मुंडक उपनिषद और श्वेताश्र उपनिषद कहता है कि भगवान जो है हृदय रूपी वृक्ष पर बैठे हुए आत्मा के साथ विराजमान है, वहां पर आत्मा जो है कर्मों का फल भोग रहा है, पर भगवान साक्षी बन के उसको देख रहे हैं। हनुमंता है, उपदृष्टा है, साक्षी है, परंतु भगवान लिप्त नहीं होते। तो भगवान जो है शत्रु के प्रति भी दयालु हैं, शत्रु जो उनको हर वक्त स्मरण करता रहता है उसके प्रति भी जो है वैर का भाव नहीं रखते। हरे कृष्ण। शील बहुबाद की।